ग्रहण सत्यम। विषय है बंधन और मोक्ष। हम में से बहुतों के मन में ये बात आती होगी कि जीवन में बंधन क्या है और ये मोक्ष क्या होता है। हमने ये शब्द सुन रखा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, परंतु जानते नहीं कि मोक्ष क्या होता है और मोक्ष चाहिए क्यों। तो जब तक हमको अपना बंधन नहीं पता लगता कि बंधन क्या है, या साधारण शब्द में कहें कि दुख क्या है, क्योंकि दुख ही बंधन है, तब तक हम मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न क्यों करने लगे। इसीलिए आम व्यक्ति ईश्वर की अवस्था नहीं समझता। ये विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज एक मौका मिला है अपने बंधन को समझने का और मोक्ष को समझने का। यदि ये बात समझ में आ जाए तो हमारा जो आगे जो बचा हुआ जीवन है वो ठीक रूप से व्यतीत हो सकता है, समय का हम सही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस विषय को समझने के लिए गुरुदेव का जो ये ग्रंथ है समता विलास, इसके दो वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला वचन है वो समझा रहा है कि बंधन क्या है, दूसरा वचन है वो समझा रहा है कि मोक्ष क्या है। फिर इसको समझने के लिए फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। पहला वचन है, ये चैप्टर है सार निर्णय जीवन, उसका वचन नंबर 14 और 15 है ये। तमाम शरीर कर्म स्वरूप है, तमाम शरीर कर्म स्वरूप है और आत्मा निह कर्म स्वरूप है। जीव यानी बुद्धि जब तक शरीर परायण होकर विचरती है तब तक इंद्रियों के भोगों की वासना में अधिक आसक्त होकर दुख व सुख में नित ही चलायमान होती रहती है। इसी अवस्था को कर्म बंधन या आवागमन कहा गया है। दूसरा वचन, आत्मविश्वास यानी सत्विश्वास, आत्म अनुराग यानी सत अनुराग, आत्म स्थिति यानी सत स्थिति की दृढ़ता से ही बुद्धि कर्म बंधन से निर्बंधन होकर नेह कर्म स्वरूप शांति को प्राप्त होकर नित आनंद को हासिल करती है। यह ही हालत परम सफलता है यानी मोक्ष है, जिसको प्राप्त करके फिर कुछ जानने योग्य और प्राप्त करने योग्य नहीं रहता, यानी निर्वाण शांति तत्व स्वरूप में परम स्थिति प्राप्त करके आनंद स्वरूप हो जाती है। तो मोक्ष स्थिति क्या है, जब ये जीव खुद ये पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाता है, उस स्थिति का नाम ही मोक्ष। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने इस शरीर की रचना को समझना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दें, मेरा जीवन किस प्रकार चलता है जरा देखें, उससे ये बात समझ में आ जाएगी। मेरे मन में जब कोई इच्छा उठती है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं अपने शरीर का इस्तेमाल करता हूं। इस शरीर में मैं जानता हूं 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, इसमें से कि जैसे हाथ पर है, मुंह है, मुंह से बोलते हैं, हाथ पर से कर्म करते हैं, ये कर्म इंद्रियां। और ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इस संसार का अनुभव करता हूं मैं, और उनका भोग विलास करता हूं। जैसे आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, जीभ से मैं स्वाद रसना ग्रहण करता हूं, ये ज्ञान इंद्रिय है। तो मान लिया मेरे मन में एक इच्छा उठती है, मैंने आज हलवा खाना है, एक इच्छा उठ गई। अब हलवा खाने की इच्छा है तो उसके लिए सूजी भी चाहिए, घी भी चाहिए, सब पदार्थ चाहिए। तो सबसे पहले आप मार्केट जाते हो और उन पदार्थों को खरीद कर लाते हो, अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों का पहले आप उपयोग करते हो। जब हलवा तैयार हो जाता है तब उसका आप स्वाद ग्रहण करते हो, खाते हो उसको। अब हलवा आपके मन के अनुकूल बना या नहीं बना, दोनों तो स्थिति हो सकती है। यदि मन के अनुकूल बन गया तब आप खुश होते हो, और मन के प्रतिकूल बन गया तब आपको बेचैनी होती है, इतनी मेहनत भी की और ये खाने का मजा नहीं आया। तो विचार करने की बात यह है कि जो हलवा है उसको मेरी जिह्वा ग्रहण कर रही है, और जिह्वा के ग्रहण करने से मन की जो इच्छा है वो पूर्ण हो रही है या पूरी नहीं हो पा रही है। तो मन की इच्छा जब पूर्ण हो रही है तब मुझको सुख अनुभव हो रहा है, मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है तब मुझको दुख का अनुभव हो रहा है। तो यहां विचार करने की जरूरत है कि फिर मैं कौन हूं। तो मैं वही तो हूं ना जिस पर सुख का असर हो रहा है और जिस पर दुख का असर हो रहा है। तो सबसे पहले यहां विचार ये करें कि मुझको बेचैन किसने किया था। मैं तो चैन से बैठा हुआ था, आराम की स्थिति थी, मुझको बेचैन किसने किया। मैं बेचैन हुआ सबसे पहले मन के अंदर जो हलवा खाने की इच्छा पैदा हुई, उस इच्छा ने मुझको बेचैन किया। उस बेचैनी को दूर करने के लिए मैंने उपाय सोचा कि इस हलवे को तैयार करके ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए मैंने शरीर का इस्तेमाल किया, कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल किया, बाजार से सामान लाया, घर में तैयार करवाया उसको, और फिर अपनी मैंने ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके उसका स्वाद ग्रहण किया। और मन की इच्छा यदि पूरी हो गई तो मुझको चैन मिला, यदि नहीं पूरी हुई तो मुझको बेचैनी मिली। तो सत्पुरुष कहते हैं कि तू वही है जो मन के अंदर इच्छा उठने से बेचैन हुआ था, तू वही है जो मन की इच्छा पूरी करने के बाद तू फिर चैन में आ गया। लेकिन वो एक दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मन ऐसी वस्तु है तेरे साथ लगी हुई जिसमें निरंतर कोई ना कोई इच्छा उठती ही रहती है, ऐसा एक पल भी नहीं बीतता तेरे मन में कोई इच्छा की तरंग संकल्प विकल्प ना उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि मन की जितनी भी गति है वो मुझको बेचैन करती है। मन की जितनी भी गति है, जितनी भी सोच है, वो मुझको बेचैन करती है। तो ये जो मैं हूं इसको ही इस वचन में कहा गया जीव यानी बुद्धि। जीव यानी बुद्धि जब तक शरीर परायण होकर विचरती है, यानी शारीरिक जीवन ही व्यतीत करती है, तब तक इंद्रियों के भोगों की वासना में अधिक आसक्त होकर दुख व सुख में नित ही चलायमान होती रहती है, यानी चंचल होती रहती है, बेचैन होती रहती है। इसी अवस्था को कर्म बंधन या आवागमन कहा गया है। तो निरंतर मेरा बेचैनी में बने रहना, इसी को शास्त्र बंधन कह रहे हैं। तो इस बंधन से मुक्त कैसे होगा? संसार में तो कोई रास्ता ही नहीं, संसार में तो हम सब जानते हैं कि संसार में तो एक ही काम होता है कि मन में जो तेरी इच्छा हो, जो तमन्ना हो, तू अपने सामर्थ्य के अनुसार कोशिश कर और कोशिश करके उसकी इच्छा को पूरी कर ले। इसके अलावा क्या करते हो संसार में? सबका ये वन पॉइंट प्रोग्राम है कि मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करना, और मनुष्य का संसार में कोई काम नहीं, इतना ही हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज तक मेरे जीवन में वो दिन नहीं आया कि मन के अंदर इच्छा का उठना बंद हो गया हो और मैं संतुष्ट हो गया हूं, वो आया ही नहीं। तो इसीलिए इसको बंधन कहा गया। तो फिर मोक्ष क्या है? फिर इस बंधन से मुक्ति कैसे होगी मेरी? तो उसके लिए सतपुरुष दूसरी बात सिखाते हैं आपको। वो कहते हैं अभी तो तू आधी बात समझा है, अभी तू पूरी बात समझ। इस शरीर के अंदर इसका मतलब तू मौजूद है, तेरा मन भी मौजूद है। इस शरीर के अंदर तेरी ज्ञान इंद्रिया भी मौजूद है, तेरी कर्म इंद्रिया भी मौजूद है। लेकिन तू एक चीज भूला हुआ है, अरे तेरे इस शरीर में जान भी मौजूद है या नहीं है? उस जान पे तेरा कोई कमांड चलता है? तेरा कोई कंट्रोल है? तब मैं सोचता हूं बात तो ठीक है, इस शरीर में जान तो है, और जब तक उसके कारण मेरी श्वास चल रही है, उसके कारण जब तक शरीर जीवित है, तब तक तभी तक तो मैं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने मन की डिजायर को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि वो जीवन सत्ता इस शरीर का त्याग कर दे तो मैं तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, सतपुरुष दूसरी बात कह रहे हैं, जो दूसरे वचन हमने सुना। वो कहते हैं कि आत्म स्थिति अर्थात आत्मा को जानने पर बुद्धि कर्म बंधन से निर्बंधन होकर निह कर्म स्वरूप शांति को प्राप्त होकर नित आनंद को हासिल करती है। यही हालत परम सफलता है। उस आत्मा को मैं जान सकता हूं, मुझे पता लग गया कि जान मेरे शरीर में है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम आत्मा है। गुरु यह कह रहा है कि तू यदि कोशिश करे तो उस ईश्वर को, उस जीवन सत्ता को तू जान सकता है। जानने का मतलब यह है कि वो उस ईश्वर सत्ता के साथ मैं एक हो सकता हूं, उसी का नाम है आत्म स्थिति। तो वो ऐसी वस्तु नहीं है जो जीभ से खाई, स्वाद आ गया, फिर गायब हो गया। वो ऐसी वस्तु है जिसको एक बार जान लिया तो हमेशा के लिए तेरे मन की वो स्थिति हो गई जिसको वो आनंद कह रहे हैं। उसके बाद कभी भी मन में तेरे बेचैनी पैदा हो ही नहीं सकती। दुनिया की कोई वस्तु तुझको दुखी कर ही नहीं सकती। मैं यही चाहता हूं। हजारों वस्तुएं मैं भोग चुका, हजारों कर्म मैं कर चुका, लेकिन मेरे मन की बेचैनी आज तक खत्म नहीं हुई। ये मेरे जीवन की वास्तविकता है, इसको मैं जानता हूं। लेकिन जो गुरु है, जो अवतार है, उसके जीवन को भी मैं जानता हूं। बाहर से देखने में उसका जीवन भी ऐसे नजर आता है, वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन मेरी स्थिति में, उसकी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। सब कुछ करके भी मैं बेचैन हूं, वो सब कुछ करके भी हमेशा चैन में रहता है। एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हा के लिए भी उसके मन में बेचैनी संभव है ही नहीं। और मैं भी यही चाहता हूं। तो उसके पास ये क्या चीज मिल गई इसको? उसको एक चीज मिल गई, मैं अपने मन की गति को जानता हूं। मेरे मन में कोई संकल्प उठता है, विचार उठता है, मैं तुरंत जान जाता हूं मेरे मन में क्या विचार उठ रहा है। ईश्वर का मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस गुरु को, उस अवतार को हर पल, हर स्थिति में अंतर्यामी ईश्वर का बोध है, ज्ञान है उसको, वो उसी में स्थित है। मैं हर पल जब तक होश में हूं अपने मन में स्थित हूं, लेकिन जो गुरु है वो हर पल ईश्वर में स्थित है जो आनंद रूप है। तो तेरा मन बेचैनी का सागर है और ईश्वर आनंद का सागर है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब तू डिसाइड कर ले तूने मन की ओर जाना है तो दुर्गति होनी होनी है, और ईश्वर की तरफ जाना है तो तेरी सदगति होनी है। जैसे जैसे ईश्वर भक्ति तेरे अंदर बढ़ेगी आनंद की बाढ़ आएगी, शांति बढ़ती रहेगी, मन की बेचैनी से तेरा छुटकारा बढ़ता रहेगा। और जितना जितना तू मन की तरफ चलेगा अर्थात मन के कारण इंद्रियां शरीर संसार की तरफ चलेगा उतनी ही उतनी तेरे मन के अंदर बेचैनी बढ़ती रहेगी, तेरा दुख बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मन के नीचे का जो जीवन है इसको बंधन कहते हैं, मन के ऊपर का जो जीवन है उसको मोक्ष कहते हैं। अब तू यदि संसार में संसारियों की बातें सीखता है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो तुझको पढ़ाते हैं, तेरे माता पिता जो तुझको पढ़ाते हैं, तेरे सगे संबंधी जो तुझको पढ़ाते हैं, वो तो बंधन का मार्ग पढ़ाते हैं, तुझको बंधन में फंसा देते हैं। किसी घर में माता पिता का बेटा हो और बचपन से वो पूर्व जन्म के संस्कार लेके पैदा हुआ हो, ईश्वर भक्ति के संस्कार हो, वो तो माता पिता से यही कहता है, माँ क्यों मुझको शादी के बंधन में बांध रही हो, क्या करूंगा मैं शादी करके। माँ कहिए नहीं बेटा, संसार में इसके बिना गुजारा नहीं होता। उसका दिल करता है मैं ईश्वर को याद करूं, लेकिन माँ उसके उस चीज को नहीं समझती, वो संसारी है। वो तो यही कहेगी बेटा शादी कर ले, उसको पता है बहू आएगी मेरी सेवा करेगी, भले ही सारी जिंदगी उसके जूते मारती रहे बहू आकर, आशा तो यही करेगी वो मेरी सेवा करेगी, इसी स्वार्थ में वो बेटे को भी बांध देती है। शादी करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वो शादी क्यों करे, सवाल तो ये है। जिसको जरूरत नहीं है वो शादी क्यों करे, जिसको इस बात की समझ है कि बंधन क्या है मोक्ष क्या है। हालांकि शादी करना ना करना ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये तेरा प्रारब्ध डिसाइड करता है कि शादी तेरी होगी भी या नहीं होगी, इच्छा करके भी कई बार शादी नहीं होती। लेकिन बात बंधन और मोक्ष की है। तो मन के नीचे का जितना भी व्यापार है, मन के नीचे की जितनी भी क्रिया है, ये सारा का सारा जीव का यानी मेरा बंधन है। इस बात का होश मुझे होना चाहिए, और इस बात का होश दिलाने के लिए ही प्रभु गुरु रूप में संसार में अवतरित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वासना कितने बड़े दुख का कारण है। तो इस इच्छा के बंधन से, इस वासना के बंधन से, या यूं कहें कि मन के बंधन से मुक्त करने के लिए वो गुरु रूप में सामने आते हैं। फिर ये समझाते हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ। कि गुरु जो तेरे सामने शरीर रूप में खड़ा हुआ है वास्तव में ये तेरा गुरु नहीं है। महाराज जी खुद कागज प्रेमी, जब रात को सत्संग कभी होता था, जब सत्संग खत्म होने के बाद रात हो जाती थी, तो महाराज जी जब बैठे होते थे, जो क्लोज उनके प्रेमी होते थे, तो महाराज जी के पैर फैला दिया करते थे, तो प्रेमी उनके पैर दबाया करते थे, कोई कंधा दबाता था उनको, तो महाराज जी उनसे कहते थे, प्रेमी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है। इसको खल्लड़ कहते थे, ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं। जिस दिन तू साधना करके अंदर कुछ अनुभव करेगा तब तुझको पता लगेगा कि मैंने गुरु को समझा क्या था और गुरु निकला क्या। असली गुरु तो अंतर्यामी है, वो बाहर प्रकट होकर यही समझाने आया है कि मैं तेरे अंदर हूं। इसीलिए तो महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। तो गुरु ही आपको समझा सकता है कि मोक्ष क्या है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। गुरु ही आपको समझा सकता है कि तेरा का तेरा जितना भी ये सांसारिक जीवन है ये 100% बंधन ही है। इसीलिए जितना भी ये बंधन कर्म है जिसको रजोगुण कहते हैं, गीता ने साफ निर्णय कर दिया कि रजसः तु फलम दुखम, कि रजोगुण का जो परिणाम है वो दुख होता है। जितना भी हमारा सांसारिक कर्म है जो वासना से प्रेरित है, उस वासना की पूर्ति के लिए जितना भी कर्म है ये दुख का कारण है। इसका मतलब हो गया कि संसार में जितना ज्यादा मेरा विकास होगा उतनी ही मेरी मानसिक बेचैनी बढ़ जाएगी। ये सत्पुरुषों का फाइनल निर्णय है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए गुरु धारण करना पड़ता है, ताकि उनकी बात पर श्रद्धा हो, उसको पढ़कर समझकर अपने जीवन की गति को हम ठीक कर। वैदिक काल देखिए कितना पुराना हो गया। अथर्ववेद के मांडुक उपनिषद में आता है, उसकी कारिका कहती है, क्या कहती है देखिए, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, अनुस्मृत माने मत भूलो, दुखम सर्वम सब दुख ही है, तेरा सुख भी दुख रूप है। क्यों? क्योंकि सुख ही तेरे मन को बेचैन करता है, उसकी प्राप्ति के लिए ही तू कर्म के लिए प्रेरित होता है और फिर कर्म में फंस जाता है। क्योंकि रियलिटी यह है कि हर सुख दुख में बदल जाता है, जो सुख प्राप्त भी है वो स्थिर नहीं रहता, और ज्यादातर तो तेरे जीवन में वैसे ही दुख रहता है, क्योंकि तेरी तमन्नाएं पूरी होती नहीं कभी, इच्छा कुछ करता है होता कुछ है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी ऐसी जगह हो, लड़का है तो बहु बड़ी इच्छा या सेवा करने वाली हो, आज्ञा पालन करने वाली हो, लेकिन भैया वो भी तो कलयुग में पैदा हुई, तेरे बेटे में वासनाएं हैं, इच्छाएं तो उसके, वो भी तो उसके अंदर भी तो वासनाएं हैं, वो शादी इसलिए कर रही है कि अपनी इच्छाएं पूरी करेगी वो, और माता पिता बच्चे की शादी इसलिए कराएंगे मेरी मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तो इच्छाओं का द्वंद्व तो चलेगा ही वहां पर, तो संघर्ष होगा। और कलयुग का मतलब होता है इच्छाओं की बढ़ोतरी, जब इच्छाएं बढ़ जाती है वो कलयुग है। तो मैं तो उस संसार में जी रहा हूं, उस वक्त में जी रहा हूं जहां इच्छाओं की बाढ़ आई हुई है, और इन्हीं बाढ़ की पूर्ति के लिए हजारों लाखों तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो भैया आप देख रहे हो ना, संसार में जैसे जैसे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो तेरा विकास तुझको नरक में ले जा रहा है या स्वर्ग में ले जा रहा है, तुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? तो जैसे जैसे तेरी साइंस बढ़ रही है, जैसे जैसे तेरी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे तेरी शिक्षा बढ़ रही है, वैसे ही ये रोग भी असीमित होते चले जा रहे हैं, तेरी परेशानियां भी असीमित होते चली जा रही है। तो वेद ने तो इतने प्राचीन काल में ये बात कह दी, उस समय तो ये साइंस नहीं होती थी, उस समय ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस समय इस प्रकार की शिक्षा भी नहीं थी, उस समय भी वेद ने, उस ऋषि ने, वो ऋषि त्रिकालदर्शी होता है, वो जानता है कि हर युग में जब भी मानव होगा वो किस वासना में किस प्रकार फंसा होगा, किस प्रकार बेचैनी में जीता होगा। इसलिए उन्होंने सूत्र लिख दिया कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। इसे भी जीने का रास्ता क्या है? तो जीने का रास्ता करें काम भोगान निवर्तयेत, तू कामनाओं और भोगों की निवृत्ति के लिए जीवन जी। ये डायरेक्शन है वेदों की, धर्म के, धर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए, ईश्वर की पूजा करने वाले लोगों के लिए, कि काम भोगान निवर्तयेत, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, क्योंकि यदि निवृत्ति प्राप्त नहीं की तो इसको बढ़ाओगे, फिर जब इसको बढ़ाओगे तो तुम्हारे जीवन की बेचैनी बढ़ेगी, शरीर के रोग बढ़ेंगे, संसार में बेईमानियां बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और आपस में ही एक दूसरे को शांति देने के बजाय मारना पीटना शुरू कर दोगे, दुखी करना शुरू कर दोगे। जैसा आजकल हम कंप्लेंट्स देखते हैं, जहां शादी होती है घर में माता पिता का चैन चला जाता है। क्यों? पहले माता पिता समझते थे कि बेटा मेरा है, अरे भाई बेटे की सारी कामनाएं माता पिता के द्वारा पूरी होती हैं, तो बेटा माता पिता से प्रेम भी करेगा, उनके पास भी बैठेगा। लेकिन अब जब उसकी पत्नी आ गई तो पत्नी को टाइम देगा या नहीं देगा वो? फिर माता पिता कहते हैं ये तो पत्नी का हो गया, तो स्वाभाविक होना ही होना है, क्योंकि वो अपनी वासना के लिए जी रहा है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहा है। तो जहां से उसकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं उसके पास तो वो जाएगा, जहां से उसकी इच्छा पूर्ति होगी वो व्यक्ति उसका अपना बन जाएगा, इसमें गलत क्या है? तो होश में लाने के लिए फिर धर्म मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, जिसकी माता पिता जरूरत नहीं समझते। कहते बेटा, बेटा हमारा अच्छा कमाए, अच्छा सामान घर में लाए, हमको पूछे, बस इतने काफी है। बाकी जो संतों का ज्ञान है, शास्त्रों का जो मार्गदर्शन है, उसकी तो हम जरूरत ही नहीं समझते, सत्संग की तो हमको जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मनुष्य जैसे जैसे संसार में आगे बढ़ता है वैसे ही वैसे इसका जीवन निराशा की तरफ चला जाता है। तो काम भोगान निवर्तेत ये कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऋषियों को पता है कि हर मनुष्य, दुनिया का हर मनुष्य मन के लिए जी रहा है, मन की तमन्ना पूरी करने के लिए जी रहा है, मन की वासना पूरी करने के लिए जी रहा है, और इस वासना में वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फंसता चला जाएगा। तो इससे निवृत्ति के लिए एक बड़ी सुंदर चीज इस शरीर में उपलब्ध है, उस सुंदर वस्तु का नाम है ईश्वर। वो ईश्वर निरंतर मेरे संग है, उसी प्रकार संग है जिस प्रकार निरंतर मुझको पता है कि मन मेरे संग है। शरीर की मौत हो भी जाए लेकिन मन मेरे संग ही रहता है, मौत के बाद भी संग मन मेरे संग रहता है, और एक दूसरी वस्तु भी मेरे संग रहती है जिसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर भी मेरे संग रहता है। ये दोनों ही चीजें मुझसे नहीं छूटती, लेकिन नया शरीर जब मिलता है तो वही मन फिर उसमें एक्टिव हो जाता है। शरीर उस वक्त भी मौजूद है, ईश्वर उस वक्त भी मौजूद है। तो कहते हैं मनुष्य जन्म जब मिलता है, इस जन्म में तेरे लिए एक मौका है कि तू इस मन की गति को समझ ले। इसको केवल गुरु समझा सकता है, केवल अवतार समझा सकता है, और उसका शास्त्र समझा सकता है, उसका ज्ञान समझा सकता है। इसलिए गुरु के जीवन पे तू ध्यान दे बारीकी से, कैसे उसने जीवन व्यतीत किया। दुनिया के बड़े से बड़े दुख उनके पास है मौजूद, महाराज जी के पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था। बड़े से बड़े दुख मौजूद होने के बाद भी उनके मन में लेश मात्र भी दुख का, दुख की दखल नहीं है, वो परम चैन में है। देखिए एक घटना एग्जाम्पल के लिए जरा विचार करके देख लें। जब पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, महाराज जी उस समय पाकिस्तान में थे, गंगोठिया में। अब पार्टीशन में क्या कतले आम हुआ सबको मालूम है, महाराज जी के शिष्य भी थे, महाराज जी का नया नया आश्रम भी बना था वहां पर। लेकिन जब पार्टीशन हुआ सब कुछ सबको छोड़ छाड़ के आना पड़ा। कितने प्रेमी मारे गए, कितने बच्चे उनके जला दिए गए, कितनी विधवाएं हो गई, धन तो लूटी लिया गया उनका, वस्तु भी सब छोड़ के आना पड़ा। जब आए यहाँ पर बलदेव नगर कैंप जो अम्बाला के पास था, वहां जब गवर्नमेंट ने व्यवस्था की थी रिफ्यूजियों के रहने की, वहां जब प्रेमी बैठे हुए थे तब पता लगा महाराज जी भी आए हुए हैं। महाराज जी जब बलदेव नगर पहुंचे तो प्रेमी घेर के बैठ गए, सब प्रेमी एक एक करके दुखड़ा रो रहे हैं, महाराज जी को सुना रहे हैं कि महाराज जी अपने थे उनके। सारी बात सुनने के बाद एक बात कह रहे हैं महाराज जी, प्रेमी धैर्य रखो, सरकार सबके लिए व्यवस्था कर रही है, सब धीरे धीरे सहन करो, सब ठीक हो जाए। वो धैर्य दे रहे हैं और एक बात वो साथ कह रहे हैं, प्रेमी सब राज इनको रोशन है, अर्थात हर चीज का भेद इनको पहले से ही पता है, सब राज इनको रोशन है परंतु चारा कुछ नहीं, इसका इलाज कोई भी नहीं। ये प्रारब्ध कर्म है, ये भोग कर ही कटेगा, ये वक्त जो बुरा आया है ये भी रहेगा, लेकिन जो प्रारब्ध का चक्र घूमेगा ये चला जाएगा, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। सारे प्रेमी बेचैन हैं लेकिन एक चीज वो नहीं देख रहे, एक चीज उनको फिर भी दिखाई नहीं पड़ रही। कोई प्रेमी नहीं सोच रहा है अरे गुरु भी तो मनुष्य ही है, हम इतने बेचैन हैं, हमारे साथ जो हुआ है इनके साथ भी तो वही हुआ, इनका भी आश्रम लुट गया, इनके शिष्य मारे गए, सब उजड़ गए, संगत उजड़ गई, इनके मन में भी तो कोई बेचैनी होनी चाहिए। गुरु परम शांत है। तो यही सिखाने गुरु आया है, गुरु के शरीर को देखकर यही सिखा जाता है, गुरु के जीवन को पढ़कर यही सिखा जाता है कि हर परिस्थिति जो मेरे लिए भी बदल रही है गुरु के लिए भी बदल रही है। गुरु चैन में है, मैं हमेशा बेचैन। तो गुरु कहता है मुझे जो चीज मिली है वो तुमको भी मिल सकती है, बस तुम मेरी बात समझ लो और मान लो, उसके अनुसार संसार में चलना शुरू करो, तुमको भी मैं वैसा ही कर दूंगा जैसा मैं से हूं। अर्थात कोई भी वस्तु प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, गुरु तो राजघराने में भी हुए, राजा जनक भी गुरु थे, राजघराने में थे, कृष्ण भी राजघराने में थे, और फकीर भी हुए, गृहस्थी भी हुए, गुरु नानक के बच्चे भी थे, और महात्मा मंगलराम जैसे सन्यासी भी हुए जिनकी शादी ही नहीं हुई। तो ऋषि तो हर परिस्थिति में हुआ है, गुरु तो हर परिस्थिति में हुआ है। इसका मतलब मैं जहां भी हूं, जिस हालत में हूं, मैं अपने मन से ऊपर उठ सकता हूं। इसके लिए कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा तप करने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए ये विज्ञान समझने की जरूरत होती है। तो समझना क्या है कि पहले मैं हूं कौन, मैंने अपने आप को समझ क्या रखा है। सत्पुरुष कहते हैं, देखो ना गीता में बड़ा स्पष्ट कहा कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। अब क्या कह रही है गीता कि इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, मैं कौन हूं प्राणी, इसको महाजी जीव यानी बुद्धि कह रहे हैं, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को भ्रामयन, इस संसार में मैं घुमाता हूं, भरमाता हूं। कैसे भरमाता हूं? अपनी माया से। माया क्या है? तेरा जो प्रारब्ध है यही तेरी माया है। पूर्व जन्म में जो कर्म करके आया है, जिनका फल तूने नहीं भोगा है, उसका एक पैकेज इस जन्म में तुझको करने कर्म करने के लिए और भोगने के लिए मिलता है, सुख और दुख के रूप। इसका मतलब पूरा जन्म तू पराधीन है, तू बंधन में है, लेकिन समझ ये रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए तेरी मनचाही चीज संसार में नहीं होती, जो प्रभु चाहता है वो होता है। इसीलिए वाणी कह रही है कि जैसी भावी त्यों चलाए, अटल हुक्म जानो प्रभु राय। जैसा तेरा प्रारब्ध है वैसा प्रभु तेरे शरीर को चलाएगा, तेरी मनमर्जी से तेरा नहीं चलेगा संसार। इसीलिए सब चाहते हैं मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो, लेकिन सब चाहते हैं जैसा आना होता है पत्नी, जैसा पति आना होता है वैसा आता है। अच्छा तो सभी चाहते हैं, क्या अच्छा होता है सबके साथ? ज्यादातर लोग शादी करने के बाद परेशान होते हैं, ज्यादातर लोग। तो इसीलिए आप संसार में कुछ भी क्यों ना कर लो, आप परेशानी से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सत्पुरुष दूसरा रास्ता बताते हैं, वो तो प्रेमी तू अंतर्यामी जो ईश्वर है उसको पहुंचने का रास्ता गुरु तुझको बता रहा है। तू कर क्या रहा है? इस समय मन के संकल्पों में तू निरंतर फंसा हुआ है, और हर मन का जो संकल्प है वो इच्छा लेके उत्पन्न होता है, मुसीबत लेके उत्पन्न होता है और तुझको फंसा देता है। इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, तू अपने अंदर उस प्रभु के नाम का जाप कर। इसीलिए गुरु के द्वारा सिद्ध मंत्र प्रकट होते हैं। उस मंत्र को जब ये जीव यानी मैं ईश्वर जानकर, साक्षात लाइव गॉड जानकर, मैं अंदर मौन होकर जब गुरु के बताए हुए तरीके से उस मंत्र का जाप करता हूं, मंत्र का जाप का मतलब ये वही प्रोसेस है, जैसे मैं मौन होकर बैठ जाऊं तो मन के संकल्प उठ रहे हैं, मुझको पता लग रहे हैं क्या उठ रहे हैं, तो मैं अपने संकल्पों का जाप कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए बंधन पैदा कर रहे हैं। इसके मुकाबले में तू प्रभु का जाप कर मंत्र के द्वारा। तो मंत्र क्योंकि उसमें शक्ति है, वो खुद ईश्वर है, वो खुद गुरु है, इसीलिए मंत्र का क्या होता है काम कि मन के संकल्पों को धीरे धीरे वो कमजोर कर दे। एक स्थिति ऐसी आती है सिमरन करते करते कि मन के अंदर संकल्प उठ रहे हैं लेकिन तुझको बेचैन नहीं कर रहे, और प्रेम से तू मंत्र की याद में लगा हुआ है। इसके बाद और तेरी स्थिति जब एडवांस होती है तब क्या होता है कि मन के संकल्प इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि तुझको उनके द्वारा परेशानी बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि सूर्य यदि है, सूर्यास्त का समय है, सूर्य वही है लेकिन सूर्यास्त का समय है उसके अंदर तेजी है ही नहीं, आंख खुली आंख से आप सूर्य देख लेते हो, उसी प्रकार मन मुझको परेशान नहीं कर रहा है। उस हालत में क्या होता है कि अंतर्यामी ईश्वर अपने आनंद को प्रकट कर देते हैं। जब तेरे मन का सूर्य इतना अस्त हो गया कि उसकी तेजी खत्म हो गई, उस हालत में ईश्वर अपने आनंद को प्रकट कर देता है। जैसे कि सूर्यास्त होता है तो चंद्रमा प्रकट हो जाता है, उसमें ठंडक है, शीतलता है, तो प्रभु का आनंद जब अंदर प्रकट होता है तब इस शिष्य को विश्वास आता है कि गुरु ने जो कहा था वो ठीक है। सतगुरु तो अंतर रमे, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो वो अंतर्यामी जो प्रभु प्रकट होते हैं, अंतर्यामी जो गुरु प्रकट होता है, तब ये जीव उस गुरु का, उस प्रभु का संग करता है। तो वही प्रभु इस मन को पूरी तरह से भस्म कर देते हैं और अपना फाइनल दर्शन देते हैं, जिसको कि हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसको कि हम मोक्ष कहते हैं। तो इस बंधन से धीरे धीरे हम मुक्त की ओर अग्रसर जाते हैं। तो रास्ता वही है, मैंने पहले यह समझना है कि पूरा का पूरा जन्म मेरा दुख रूप है, तो मैंने मन का गुलाम नहीं बनना, मन की गुलामी नहीं करनी, मैंने इसकी मन की गुलामी से मुक्ति का रास्ता तलाश करना है। वो रास्ता केवल गुरु बताता है। जब गुरु बताता है तो यही विज्ञान समझाता है कि तू अपने मन, इंद्रियां, शरीर और संसार के बंधन में जी रहा है। मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में तू सीख सकता है कि तेरे शरीर के अंदर जान भी है, यानी तेरे शरीर के अंदर ईश्वर भी है जो शरीर को जीवित रखे हुए है, जो तेरे प्रारब्ध को निर्धारित करता है और प्रारब्ध के अनुसार तुझको संसार में जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। तो सुख और दुख तेरे जीवन में आते हैं, कर्म का होना ना होना होता है, वो तेरा प्रारब्ध डिसाइड करता है। तो तू इस प्रारब्ध के चक्र में फंसकर गुलाम बनकर जीता है, इसीलिए कभी भी तुझको संतोष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए एकमात्र तेरे जीवन का रास्ता है जीने का, यदि कोई है तो वो है ईश्वर भक्ति का रास्ता। इसीलिए सिमरन सबसे ज्यादा जरूरी काम है, सत्संग सबसे ज्यादा जरूरी काम है। इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएं, इसके लिए वक्त निकालें ताकि इस बंधन से बचकर मोक्ष को प्राप्त करके मानव जीवन सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।